जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन जारी यमुना यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोदर सत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद्र की सिकंदरा श्रीमद्भागवतम की समवेद गौर भक्तविंद की जय। गोपिमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ददो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्ण। स्कंद चार अध्याय 31 श्लोक संख्या 10। किम जन्म भीरवा इह लोके सॉरी किम जन्म किम जन्म भिस्त्री भीवेह शुक्र सावित्र यज्ञ के कर्म भीरवात्रि प्रोक्ते पुंसोपि विबुधाशुषा किं जन्म भीस्तिर्भिवेह शोक्र सावित्र याज्ञिके कर्म भीरवात्रि प्रोक्ते पुंसोपि विबुधायुषा किं जन्म भीतिर्भिवेह शुक्र सावित्र यज्ञिके कर्म भीरवात्रि प्रोक्ते पुंसोपि विबुधायुषा। विवेह सावित्र यज्ञ के विविधायुषा किम क्या लाभ जन्म भी जन्मों से त्रिभि तीन वा अथवा यह इस संसार में शोक्र वीर्य से सवित्र दीक्षा से याज्ञिके पूर्ण ब्राह्मण बनने से कर्म भी कर्म से वा अथवा त्रयी वेदों से प्रोक्ते उपदिष्ट पुंस मनुष्य को अपि भी विबुध देवताओं की आयुषा आयु से अनुवाद वासी प्रभुपाद। सुसंस्कारी मनुष्य के तीन प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है जिसे वीर्य द्वारा जन्म कहते हैं शुक्र। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और वो यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक यदि वे भगवान को प्रसन्न नहीं करते करने हेतु न हो तो वे व्यर्थ है। तात्पर्य शुक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीर्यपात से जन्म होना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शुक्र जन्म में जन्म जन्म में जन मनुष्य को सुधार किया, सॉरी शुक्र जन्म में जन्म मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का वह कथन है कि यदि उच्च जातियों गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, यही वैदिक पद्धति है। किंतु पंचरात्रि का पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठाने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पंचरात्रि का विधि का अपनाता है। जैसे कि शिला सनातन गोस्वामी का उपदेश है, यथा कांचनता यति काश्चम रस विधानता तथा दीक्षा विधान द्विजत्वम जायते नाम। जिस प्रकार काश्य धातु पारे के साथ मिलाने जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जाना जा सकता है। अतः हम अपने कृष्ण भवन आंदोलन में शिष्य की पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह यज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्णभवन आंदोलन में जब तक कोई दो बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण जप द्वारा तथा दूसरी बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा, तब तक उसे न तो रसोई में न ही पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। किंतु जब कोई इस पद को प्राप्त करता है जिससे वह आर्च विग्रह की पूजा कर सके तो उसके पूरा जन्म पर ध्यान नहीं देना दिया जाता। चांडालोपी द्विजा श्रेष्ठा हरिभक्ति परायण हरिभक्ति विहीनश्चे द्विजोपि सुपच अधमा। भले ही कोई चांडाल के परिवार में क्यों न जन्म ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी वह भक्ति में शून्य है तो वह अधम स्वपच कुत्ता खाने वाला के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वह चंडाल कुल में क्यों न जन्म ले शुद्ध हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते, विप्रात द्विषड गुणयुतात अरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपचन वरिष्ठम। यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि वह भगवान की पूजा करने में विमुख हो जाता है होता है तो वह अधम समझा जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान को सेवा में आसक्त रहता है भगवान की सेवा में आसक्त रहता है तो वह महिमा मंडित होता है, भले ही वह चंडाल कुल में क्यों न जन्मा हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसका परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ तक बन जाता है। और ऐसे भी अनेक उदाहरण है जहाँ क्षत्रिय वैश्य या अन्य निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था पा लेने पर व्यक्ति दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता है। अतः नारद मुनि कहते हैं, यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसा वर्णाभ्यव्यञ्जकम् यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत। यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, उसके ब्राह्मण बनने की इच्छा अच्छा अवसर रहता है, किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों को पूरा नहीं कर लेता उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। दूसरी ओर यदि किसी शूद्र व्यक्ति में भी ये ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ही ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए भागवत महाभारत भरद्वाज संहिता पंचरात्र तथा अन्य अनेक शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। जहाँ तक देवताओं की आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया है, सहस्रायुग पर्यंतम हर यद ब्राह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांता तेह अहो रात्र विदो जन। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों से 1000 गुना बड़ा होता है। ब्रह्मा के एक रात्रि भी उसी प्रकार होती है। ब्रह्मा ऐसे दिन रात वाले 100 वर्ष तक जीवित रहता है। विपदा युषा शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को दीर्घायु भी प्राप्त हो किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक है और जब तक वह भक्ति नहीं करता उसकी आयु उत्तम जन्म सत्कार्य तथा सभी कुछ व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावन्यभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। किं जल्मभीतिर्भिः एव शोक्रसावित्रयज्ञके कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्ते पुंसोऽपि विबुधाविषा। तो यहाँ पर नारद मुनि प्रजेतास को बता रहे कि किस प्रकार जो सुसंस्कृत व्यक्ति है उसके 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म माता पिता से, फिर दूसरा जन्म जब उसका यज्ञ पवित्र होता है, और तीसरा जन्म जब वो उसकी दीक्षा होती है। तो 3 प्रकार का जन्म मनुष्य के बताया है, श्रोत्र सावित्र यज्ञ का, और पशु का सिर्फ एक ही जन्म होता है। तो यहाँ पर बताया कि प्रभुपाद बताते किस प्रकार कृष्ण भावना में जो पहला जन्म तो माता पिता से होता है, जो अच्छे माता पिता से, दूसरा जन्म जब उस जब व्यक्ति को दीक्षा मिलती है और जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है और फिर वो नियमों का पालन करते हुए जप करते रहता है तो उसे ब्राह्मण दीक्षा देते। तीसरा जन्म वो है कि जिसमें वो भगवान की अर्च विग्रह की सेवा कर सकता है। तो प्रभुपाद आत्म में बता रहे हैं कि ब्राह्मण को असली ब्राह्मण वही है कि वो गुण है उनमें। कोई जन्म से कोई ब्राह्मण होता नहीं है, जब तक उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं आते तब तक वो ब्राह्मण नहीं होता। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। जैसा प्रभुपाद बता दे कि कोई अगर जज के घर में जन्म लिया है और कोई डॉक्टर के घर में किसने जन्म लिया तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता जब तक वो उसको क्वालिफिकेशन योग्यता प्राप्त नहीं करता। तो जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता तब तक अगर वो बहुत बड़ा ब्राह्मण हो बहुत सारे उसमें गुण भी हो तो वो शूद्र ही माना जाता है, क्योंकि प्रभुपाद कलयुग में कोई तो गर्भधारण संस्कार करते नहीं, तो इसलिए हर व्यक्ति कलयुग में शूद्र माना है। लेकिन पांचरात्रि की पद्धति से अगर कोई दीक्षा ग्रहण करता है और भगवान को शरण जाता है तो अगर वो शूद्र भी है निम्न जाति में जन्म लिया है तो वो भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है कि न शूद्र भगवता भक्तस्ते तो भागवता मतः सर्ववर्णेषु शूद्रा ये जना भक्त जनार्दने। कि भगवान कहते कि मेरे मत से जो भगवत भक्त है वो कभी शूद्र नहीं हो सकता, हालांकि उसने अगर उनका जन्म पूर्व जन्म भक्ति में आने से भक्त बनने से पहले अगर वो शूद्र कुल में भी उसमें जन्म की नहीं क्यों नहीं लिया हो, लेकिन भगवान के मत से अगर वो भगवान का भक्त बन जाता है तो वो शूद्र नहीं है, वो महाभागवत है। लेकिन सर्ववर्णेषु शूद्रा अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो शूद्र है। तो इसलिए कहा थे सनातन गोस्वामी यही कहते कि जब व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है तो ब्राह्मण और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बनता है। उदाहरण देते कि जैसे काश्य धातु को पारा से जब रिएक्शन होता है तो सोना बनता है, उसी प्रकार जब दीक्षा के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तथा दीक्षा उदाहरण है ना द्विजत्तम जायते नाम। तो प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि व्यक्ति की ऑक्यूपेशन वृत्ति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्राह्मण है या नहीं। तो प्रभुपाद एक जगह ये भी कहते हैं कि कभी कभी भारत में देखा जाता है कोई अगर डॉक्टर की पढ़ाई भी नहीं किया है लेकिन उसने उसको ज्ञान को संपादन किया है, तो उसने थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया है तो वो मेडिकल स्टोर पे काम करता है और लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए रियल स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कि ब्राह्मण को उसके गुणों से पहचाना जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहता है कि नमे भक्ता चतुर्वेदी मत भक्ता सुबचो प्रिया तस्मे देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथाहम। कि अगर कोई चार वेदों का चतुर्वेदी उसको बहुत ज्ञान है लेकिन वो मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं है। नमे भक्ता चतुर्वेदी मत भक्ता सुपच प्रिया। लेकिन मेरा भक्त अगर वो सुपच या चंडाल परिवार में जो कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में अगर कुछ का जन्म हुआ हो लेकिन वो मेरा भक्त बन जाता है तो मेरे वो बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, जो कुछ दे उसको स्वीकार उनको कुछ देना चाहिए और जो कुछ वो देते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए और वो पूज्य है, ऐसा भक्त पूज्य है जैसा मैं पूज्य हूँ मेरे समान ही मेरे भक्त पूज्य है। हालांकि उसका जन्म सुपच परिवार में क्यों ना हुआ हो। तो ये निज निज जाति में जन्म होना ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, अगर वो भगवान की शरण लेता है तो। चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है किस प्रकार, जब कालिदास भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में, कालिदास बहुत बड़े बहुत भक्त थे, बहुत नम्र भक्त थे, उसने सारे वैष्णव का महा पाप किया था और वही उनकी बहुत ही शुद्ध चेतना से वो करते थे। एक बार वो कुछ आम लेकर झाड़ू ठाकुर के घर गए, तो झाड़ू ठाकुर का जन्म तो निज परिवार में बाह्य रूप से देखा जाए तो, लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे, तो उनके घर गए और उनसे उनने प्रणाम किया। उनकी पत्नी के साथ जब झाड़ू ठाकुर बैठे थे, उनको प्रणाम किया और उनसे बात करने लगे। तो फिर उन्होंने जिनको उनको आम प्रदान किए, तो झाड़ू ठाकुर ने बोला कि मैं तो मेरा निज कुल में जन्म हुआ है, आप तुम बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण आतिथि आए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। झाड़ू ठाकुर ने कहा कि मैं आपका दर्शन करके मैं पवित्र हुआ हूँ, आज मेरा जो अधम है वो इतना, लेकिन आपके दर्शन से पवित्र हो, मेरी एक ही इच्छा है कि आप में आपके चरण मेरे सर पर रखिए। तो झाड़ू ठाकुर कहने लगा आप ये क्या करें, मैं तो यार मेरा एक निज कुल में जन्म हुआ है। तो उस समय कालिदास सारे शास्त्रों को कोट करते हैं किस प्रकार जो भक्त होता है वो कोई निज निज जाति से नहीं होने का नहीं होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। कहते कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तपस अपरानस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम, कि अगर किसी में भगवत भक्ति नहीं है तो उसमें जो कुछ अच्छे गुण हो, जो कुछ उसने उपलब्धियाँ एडवांसमेंट किया हो, सब कैसे है डेकोरेटिंग द डेड बॉडी, मृत देह को सजाने के समान है। कि जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ निम्न जाति के लोग भारत में क्या करते हैं, जब किसी का उनका देहांत हो जाता है तो उनको वो सजाते और बहुत कपड़े डालते हैं, उसके ऊपर गार्लैंड डालते हैं, लेकिन एक दिन जब आत्मा चला जाने के बाद उसका कोई कुछ लाभ नहीं हो, व्यर्थ है। उसी प्रकार अगर किसी में भगवान की भक्ति नहीं है तो उसमें बहुत अच्छा कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो, जाति अच्छा उच्च जाति में बहुत शास्त्रों का प्रकांड पंडित हो, जाति शास्त्र जपस तपस बहुत तपस्या किया हो, बहुत शास्त्रों का वैदिक मंत्रों का जप किया हो, और कैसे है अप्राणस्य देह से मंडलम लोकरंजन, वो व्यर्थ है। उसी प्रकार भगवान भी उद्धव कहते हैं कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा, ये तो भक्ति ममोर्जिता लास्ट लेने से कहते हैं कि सिर्फ मैं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ, किसी प्रकार के जो अलग अलग मार्ग है, न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। या तो तप योग ज्ञान स्वाध्याय इससे भगवान प्राप्त नहीं किया जाता, सिर्फ भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार कालिदास अनेक शास्त्रों का उनको दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार देवते ये कहते हैं अहो बत सुपचो तो गरियन यद जीवाग्रे वर्तते नाम तो व्यस्ते पुस्तपस्ते विष्णु जवार्य नाम ब्रह्म नाम ब्रह्माचो नाम ग्रहंती ये थे, जो भगवान के नाम ले रहा है, भगवान के पवित्र नाम को जप कर रहा है, अगर वो सुपच कर्म में भी जन्म लिया हो, वो यज्ञ करने का अधिकारी है और उन्हें सारे तीर्थस्थान स्वाध्याय तीर्थ वेदाध्ययन तीर्थ यात्रा जप तप सब कुछ कर लिया है। तो इस प्रकार झाड़ू ठाकुर कहते कि ये सही है, लेकिन मैं ऐसा उच्च कुल में सॉरी ऐसा भक्त नहीं हूं। तो इस प्रकार फिर जब देखा कालिदास ने कि ये मान नहीं रहे, तो उन्होंने उनको आम देके चले जाके वो छुप गए। और तो हम जानते किस प्रकार जब झाड़ू ठाकुर ने आम और आम की गुठलियाँ खा के घर के पीछे फेंक दिया, तो बहुत प्रेम से अरे कालिदास ने उनका महाप्रसाद स्वीकार किया। तो क्योंकि वो जानते थे कि जो वैष्णव भक्त होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सुपच्योत गरियन, सुपच मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाला। प्रभुपाद बता रहे थे एक जगह कि किस प्रकार वो जब जा रहे थे तो बोले कि जब मैं फिलीपींस से जा रहा था मैंने सुना कि वहाँ लोग कुत्ते का मांस खाते, फिलीपींस, कोरिया, जापान, यहाँ पर तो कुत्ते का मांस खाते। लेकिन वहाँ भी देखा कि वो सिद्ध स्वरूपानंद महाराज है, उनको सिखा रहे और वो मान भक्त बन रहे। तो किस प्रबल थे कि भक्ति की ऐसी शक्ति है कि जो चंडाल है वो भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बन सकता है। तो बात कहते थे कैसे भी इवन भारत में भी जो आसाम है वहाँ पे लोग वो कुकुर पिट कुत्ते का जो पिठा है वो खाते हैं, केक पिठ। पहले उनको राइस का पाउडर खिलाते उसको, फिर उसको मार खाते हैं। तो इस प्रकार बताया थे कि इस प्रकार जो ब्राह्मण सुचि सद्भक्ति दीप्ता अग्नि दुर्गधा दग्ध दुर्जाति कलमशा, अगर एक पवित्र ब्राह्मण है और जो भगवान की भक्ति में लगा है तो वो भक्ति के प्रभाव से उसकी दुर्जाति और जिसका पाप कर्म सब दग्ध हो जल के उसके सर कलमश नष्ट हो जाते हैं। स्वपाकोपि बुद्ध श्लाघ्यो न वेदो नोपि नास्तिका, अगर वो मांस खाने वाला चंडाल भी है सुपच भी है तो वो श्लाघ्य है, वो प्रशंसनीय है, वो पूजनीय है। अगर अगर वो अगर कोई वेदों का प्रकांड ज्ञानी भी है अगर वो नास्तिक है तो उससे आधम है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान के भक्ति या भगवान के भक्त बनना ही सब महत्वपूर्ण है। तो बात कहते हैं कि अगर आपके पास सारे गुण हैं ब्राह्मणों के जो 12 गुण थे, अगर लेकिन सब योग्यता होने का अगर भक्ति में नहीं है तो सब शून्य है। सबस्ट्रैक्ट कृष्णा, सब कुछ व्यर्थ है। अगर सबके सामने अगर एक लगाए कृष्ण को लगाएंगे तो उसका कुछ महत्व है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो प्रभुपाद या तात्पर्य ये बताते हैं कि किस प्रकार योग्यता के आधार पर किसी को जानना चाहिए कोई ब्राह्मण है ये शूद्र है। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे जो क्षत्रिय वैश्य है वो शूद्र और चंडाल भी बन गए, और दीक्षा लेने का कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया हुआ भी ब्राह्मण बना है। शास्त्र में आसवाने के उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि ने मृगारी को दीक्षा दी प्रदान करके, वो इतना पतित था, इतना आदम था, लेकिन नारद मुनि की दीक्षा के लेने से वो सर्वश्रेष्ठ भक्त बना। और उसके विपरीत हम देखते हैं कि जो त्रिशंकु है वो चंडाल बन गया था अपराध करने। ऐसे अनेक उदाहरण, जैसे ऋषभ देव के 100 पुत्र में से कुछ ब्राह्मण बन गए कुछ क्षत्रिय बन गए, 81 पुत्र जो क्षत्रिय बने और कुछ 9 ब्राह्मण बने थे। तो इसी प्रकार और भरत महाराज जो ज्येष्ठ पुत्र थे होते भगवान के महान भक्त बने थे, और कुछ कर्मकांडे ब्राह्मण बने। तो नव योगेंद्र है वो महान बने थे। उसी प्रकार तो बात यही बताते हैं कि और जैसे ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं होता, नहीं तो जो कश्यप मुनि है ये तो ब्राह्मण है लेकिन उनसे अनेक पत्नियां थी उनकी, दक्ष की 13 पुत्रियों से उन्हें विवाह गया, तो हर एक पुत्रियों से उन्हें अलग अलग संतति प्राप्त हुई। किसी से देवता हुए, किसी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए, किसी से सर्प उत्पन्न हुए, जैसे कद्रु से सर्प का उत्पन्न हुआ, अनेक अन्य पशुओं की योनि मतलब स्पीसीज का जन्म हुआ। तो ऐसे मतलब यह नहीं क्योंकि वो पिता ब्राह्मण है तो बाकी सब ब्राह्मण है, क्योंकि जन्म से नहीं होता है, वो किस प्रकार उन्हें योग्यता प्राप्त किया है, और अगर वो क्या वो भगवान का भक्त बना है। अगर कोई भगवान का भक्त नहीं बनता तो वो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक साइंस है, जैसे भृगु संहिता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्योतिष होते हैं वो आपको बता सकते हैं आपका पूर्व जन्म क्या है था, अभी आप क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। तो ये ज्योतिष होते थे वो जानते थे। तो पूर्व काल में जब ज्योतिष आते थे, जैसा परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने ये ज्योतिषी को बुलाया था वो बताने के लिए कि जो बालक है आगे चल के क्या होगा उनका। तो ज्योतिष आके बता देते, क्योंकि जब परीक्षित महाराज जन्म हुआ तो उनके पिता तो मर चुके थे, जब 16 साल के थे तो उनके वो माता के गर्भ में थे। तो जब फिर उनके जो दादा हैं उन्होंने उनको बड़ा जन्म हुआ तो फिर ज्योतिषी को बुलाया, उनको पूछा, ज्योतिष सब कुछ बताया कितने महान हो गए और किस प्रकार जब उनका अंत समय सर्प का दंश से उनका मृत्यु होगा। तो ये जो ज्योतिषी है, जैसे अगर किसी को चोरी करना है तो वो भी ज्योतिषी को उपयोग करता था। जैसे सनातन गोस्वामी जब वो होटल में रहने गए थे इनकीपर, तो उसने उनको बताया था। तो उसी प्रकार महाप्रभु भी एक दृष्टांत देते हैं सनातन गोस्वामी को उपदेश करते समय कि जो एक सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजर, तो वो एक व्यक्ति के पास गए तो इसका चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे किस प्रकार जो मनुष्य जो जीवा जीवात्मा इस संसार में घूम रहा है, भटक रहा है वो, और एस्ट्रोलॉजर कौन है, एस्ट्रोलॉजर के वैदिक शास्त्र है और उन्हें क्या बताते हैं कि आपका जो असली ट्रेजर, आपका जो असली धन संपत्ति है वो भगवान की भक्ति, कृष्ण कृष्ण प्रेम है। तो किस प्रकार उसे प्राप्त करे उसका वो डायरेक्शन शास्त्र देते हैं। इसलिए महाप्रभु उनको एक दृष्टांत दे रहे थे कि किस प्रकार एक सर्वज्ञ ब्राह्मण एक गरीब व्यक्ति के पास गया और जब उनके उनका हाथ देखा तो बोले, अरे तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़े संपत्ति लिखा रखा है, धन संपत्ति तुम्हारे पिता ने संपत्ति रखा है, लेकिन वो आपको बता नहीं पाए क्योंकि उनका मृत्यु और कई जगह भी हुआ था। तो जो गरीब व्यक्ति है उन्हें कहा, मुझे पता है कि मेरे पिताजी बहुत अमीर थे लेकिन वो मुझे पता नहीं है वो धन संपत्ति कहाँ रखा है जो मेरे लिए रखा है। तो उस समय वो सर्वज्ञ ब्राह्मण को पूछते कि आप कहाँ मुझे आप बता सकते हैं जो कहाँ रखा है। तो उस समय सर्वज्ञ ब्राह्मण कहते हैं कि आप यही आपके घर घर के पास ही वो संपत्ति रखा है, लेकिन आप अगर उसको दक्षिण दिशा में उसको खोदेंगे तो वहाँ बहुत सारे मधुमक्खी है, पॉइजनस वाप्स, वो आपको काटेंगे, आपको धन प्राप्त नहीं करने देंगे। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं कि दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या है, तो दक्षिण दिशा का दक्षिण मतलब दक्षिणा भी होता है ना, जब पृष्ठ को दक्षिणा देते दक्षिणा क्यों देते हैं कि उसने कुछ आपके लिए अनुष्ठान किया है, जो पृष्ठ तो पृष्ठ क्या करते हैं, कर्म कांड करते। तो कर्मकांड करके आपके लिए आपकी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो कर्मकांड करते, कुछ यज्ञ करते हैं और उसके बदले वो दक्षिण। तो ये कर्मकांड के द्वारा आप आपकी भौतिक इच्छा वो पूरी नहीं होगी और बढ़ती जाएगी, और जो कर्म जो पृष्ठ है जो आपको राइट डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि उनका बिजनेस है तो इसलिए आपको बताएंगे नहीं। तो इसलिए वो कहते कि जो इंसेक्ट और वाप्स और जो पॉइजनस मक्खी है जो आपको काटेंगे, तो उसका मतलब एक बता रहे हैं कि जो कर्मकांड के द्वारा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भी कहते हैं कि आप अगर पश्चिम दिशा में खोदेंगे तो वहाँ बड़ा यक्ष है, वो आपको तकलीफ देगा, आपको उसको भजन प्राप्त करने नहीं देगा। तो उसको बता दिए कि जैसे स्पेकुलेशन और एथिज्म, दिस इज़म, दैट इज़म, ये उसके द्वारा मानसिक तर्क वितर्क ये करने से भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप उत्तर दिशा में भी थोड़ा खोदेंगे तो वहाँ क्या है, वह बड़ा काला सर्प है, वो आपको निगल जाएगा। तो जो जिस जहाँ योग योग मार्ग है, जैसे कर्म मीमांसा, जैसे द्वारा ये सिखाया जाता है कि आप अपने अच्छे कर्म करो, अब अच्छे कर्म करो तो आपको तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, आपको भगवान की शरण जाने की आवश्यकता क्या है। अगर आप अच्छा काम करते, होनेस्ट वर्क, कर्म मतलब क्या है, कुछ अच्छा काम करना जिससे आपकी जीविका चला सके। तो कहे कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ ब्लैक मेलिंग नहीं करता हूँ, मैं कुछ ब्लैक मार्केटिंग नहीं करता हूँ, सरकार को टैक्स देता हो, तो मैं अच्छा कर्म करता हूँ। तो इसके ऊपर बात करते हैं मंडेन मोरालिस्ट। तो ये मोरालिटी से भी योग करने से या फिर इम्पर्सनल भगवान में लीन होना योग के द्वारा, निर्विशेष कि भगवान में ध्यान करने, इम्पर्सनल लिबरेशन प्राप्त करना योग ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, तो इसे भी कुछ होगा नहीं मंडेन मोरलिस्ट। तो बात बताते कि जैसे युधिष्ठिर महाराज, बात बताते कि युधिष्ठिर महाराज बिकॉज ही वॉज नॉट डिवोटी, क्योंकि वो वॉज अटैच, वो बहुत आसक्त थे अपने सत्य बोलने के कारण। तो जब भगवान ने कहा फिर भी वो सत्य बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये कुछ लोग होते हैं भगवान की शरण नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूर्व दिशा में अब थोड़ा भी खोदेंगे तो आपको धन प्राप्त होगा। उसका मतलब पूर्व दिशा क्या है, पूर्व दिशा भक्ति है। तो कर्म ज्ञान योग इसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ आप भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि अच्छे सर्व ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी भक्त कृष्ण वश है ये भक्त तन रित भजी, कि कर्म ज्ञान योग इसको आप त्याग दो कर्म, कि इससे द्वारा भगवान को प्राप्त, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही अब भगवान को प्राप्त होते। और सिर्फ भक्ति करने से जो मनुष्य जीवन का जो पूर्ण सर्वोच्च उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए कि भगवान गीता में कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणम रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षय श्रीमासु च, कि ये सब कर्म है, कर्मकांड है, या मेंटल स्पेकुलेशन, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, या ये मंडेन मोरालिटी योग, ये सब त्याग करके अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं। भक्ति तुष्यति केवल नुच गुणे भक्ति प्रिय माधवा। तो बाकी अनेक जो कुछ गुण है, जो ब्राह्मणों के गुण हैं, अगर वो भगवान का भक्त नहीं बनता तो उसका जन्म व्यर्थ है। अगर कोई बड़ा आयुष्य भी प्राप्त हो, उसे देवता का भी आयु उसके प्राप्त हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं बनता तो उसका जीवन व्यर्थ है। उदाहरण दिया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी बोलता है परीक्षित महाराज को कि क्या श्लोक है, वरम मुहूर्तम घटेत, कि एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी भगवान के स्मरण में जीना कि हजारों साल जो पेड़ है, वृक्ष है, वो जीते उससे श्रेष्ठ है। जब वृक्ष है बहुत, वो हजार हजार साल जीते हैं, लेकिन उनके जीवन का क्या लाभ है। लेकिन अगर भगवान की चेतना में और कोई एक क्षण भी जीता है तो वो श्रेष्ठ है। और उदाहरण देते खटवांग महाराज का, खटवांग महाराज जब देवता ने उनसे पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, खटवांग महाराज बहुत ही अलर्ट थे अपनी टाइम ड्यूटी, तो उनने पूछा कि मेरा आयु कितना बाकी है, तो उनने कहा कि आपका एक मुहूर्त बाकी है, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। तो खंडवांग महाराज उन्हें सब कुछ त्याग करके आए और भगवान की शरण लिया और भगवान को प्राप्त किया। तो इसलिए तात्पर्य में इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि भगवान की सेवा में रत्न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हो तो वो सब व्यर्थ है। तो यहाँ पर दो बातों की बात की जा रही है कि अगर कोई चंडाल भी हो, चंडाल के परिवार में जन्म भी लिया हो, अगर वो भगवान का भक्त होता है, भगवान की शरण लेता है, तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, उसका जन्म श्रेष्ठ है और वो भगवान की इतना ही पूज्य है। और दूसरा बाकी सारे जो मार्ग है, बाकी सारे जो पद्धति है, उससे श्रेष्ठ भक्ति है। जो कोई भगवान की भक्ति करता है तो जो असली धन है कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त कर सकता है। वो कैसे प्राप्त कर सकता है? वो सिर्फ भगवान की भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। जयंतरा श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे सावित्र
और याज्ञिका, तो शौक्र समझ में आ रहा है, तो सावित्र का मतलब द्विज होता है ना, ब्राह्मण दीक्षा होता है,
उपनयन
उपनयन। उसके बाद याज्ञिक का क्या हरिनाम दीक्षा गया, याज्ञिक क्या है वो?
या प्रभुपाद क्या हमारे संस्था में तो फर्स्ट सेकंड दीक्षा को याज्ञिक कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो बाहर जो वो गायत्री होगी, क्योंकि बाहर तो एक ही दीक्षा होता है।
याज्ञिक का जो होता है उसको गायत्री बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है सावित्र?
वो जब बच्चों को उपनयन दिया जाता है
वो उसको सावित्र बोलते हैं, जैसे उपनयन दिया जाता है। और बाद में यज्ञ के समय क्या करते हैं वो लोगों को, जिनका ऑलरेडी उपनयन हो गया पहले, उनको यज्ञ के में क्या करते हैं? तो प्रभु ने बोला कि कुछ यज्ञ करना हो उसके लिए भी इनिशिएशन होता है स्पेशल। अभी हमारे भक्त लोग भी जो यज्ञ करते हैं उनके लिए कुछ खास दीक्षा की जरूरत है यज्ञ करने के लिए?
हमारे जो ब्राह्मण दीक्षा वही करते हैं ना, ब्राह्मण निश्चित। हाँ, तो आई थिंक डिफरेंट संप्रदाय में डिफरेंट होता है। जो कोई वो जो हरे नाम नाम का टैंपिंग होता है, चिन्ह होते हैं, वो छोटा बच्चे तो उपनयन छोटा बच्चा होता भी दिया था, लेकिन तो वो ये नहीं कर सकता, उनको और एक दीक्षा होता है
बाद में बड़ा होने के बाद, यज्ञ होने के बाद वो क्या करते हैं।
हरे कृष्ण
प्रभुपाद की।